ओम शांति। एक देश का बहुत बड़ा पादरी निरीक्षण के लिए एक छोटे से गांव में जाता है, और ये जो बड़ा पादरी है, आर्च बिशप, जब भी किसी दूसरे छोटे चर्च में जाता है तो उसका स्वागत बहुत सी घंटियों के द्वारा होता है। तो जब ये पादरी इस छोटे से गांव में जाता है और देखता है यहां तो मेरा स्वागत हुआ ही नहीं, तो उस छोटे से चर्च के उस पादरी से वो बाद में पूछता है, क्या तुम्हें पता नहीं जहां मैं जाता हूं वहां पर मेरा घंटियों के द्वारा स्वागत होता है, पर तुम्हारे गांव में और तुम्हारे चर्च में मेरा जरा भी स्वागत नहीं हुआ, क्यों? तो वो जो पादरी होता है उसकी एक आदत होती है, कोई भी चीज की शुरुआत वो यहां से करता है, इसके हजार कारण है, तकिया कलाम। कोई भी उत्तर जब उसे पूछा जाता है ये क्यों, तो वो शुरुआत करता है हमेशा, इसके हजार कारण है। तो यहां पर भी वो कहता है कि महानुभाव, आपके स्वागत में घंटियां नहीं बजी, इसके हजार कारण है। और पहला कारण यह है कि हमारे पास घंटी नहीं है। तो वो मुख्य पादरी आर्च बिशप कहता है ये एक कारण काफी है, अब बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना ही काफी है। ये कहानी हम उनकी सुनाई। आज बाबा ने कहा, चाहे बीमार हो, बुखार हो, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुछ भी हो, तो भी क्या मुरली पढ़ना जरूर है, कोई भी कारण नहीं चलेगा। सेवा बहुत थी, बीमार थे, व्यस्त थे, टाइम नहीं मिला, कुछ भी, मुरली पढ़ना जरूर है। सुनना पर्याप्त नहीं है, श्रवण सुखद है। श्रवण केवल कन रस न रह जाए, जब तक उसे पढ़ा ना जाए, जब तक वाक्य वाक्य को समझा ना जाए, जब तक शब्द शब्द चेतना में घुल मिल ना जाए, तब तक उसका स्वरूप भी बना नहीं जा सकता। और पढ़ना अर्थात अतिरिक्त समय निकालना पड़ेगा, पढ़ना अर्थात संकल्प करना पड़ेगा, पढ़ना अर्थात बुद्धि को ठहराना पड़ेगा, पढ़ना अर्थात बाकी अन्यत्र जगों से मन को निकाल मुरली में लगाना पड़ेगा। इसके लिए कोई कारण नहीं। तो आज हम कल की जो व्यक्तवाणी थी उसका दूसरा भाग, पार्टियों से मुलाकात, उसकी चर्चा करेंगे। कल रात पांडव भवन में पहले भाग की विस्तार से चर्चा हुई, तो दूसरे भाग में पहले आप बताएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। क्या कहा बाबा ने, पार्टियों से क्या कहा? पहले तो ये बताओ, पार्टियां थी कौन सी? ऑस्ट्रेलिया थी और ब्राजील, और क्या था? दादी और दादी जान की। तो क्या क्या कहा पहले आप बताएंगे, फिर हम मुरली की शुरुआत करेंगे। किसमें प्रोग्राम, किसमें राज भरे हैं? सेवा का जो चक्कर लगता है उसमें राज भरे हैं। अच्छा, और कदमों में पदम समाये, और हम्म, और नामदान, ये कौन सा दान है? कौन सा दान है? पर दान, नाम का दान करना अर्थात क्या करना? गुणों का दान करना है नामदान अर्थात, उसमें वरदान दान होगा, नामदान क्या है? चलो उसमें आएंगे। और क्या कहा? अनेकों की आस पूरी की तो वो वरदानी मूरत बन गई। और हाँ, दूर चाहे कितने भी हैं परंतु जो याद में है वो समीप है। और वो चक्कर का थोड़ा बाहर निकलो, दूसरा भी बातें हैं, वो हो गया। और नामदान पर क्लास करा, दादी को होमवर्क दिया बाबा ने, और ट्रस्टी है, और स्वराज अधिकारी, दूसरा भाग मुरली का, वो हो गया। स्वराज्य अधिकारी की 8 बातें, सभा की 10 बातें, और बाबा को क्या क्या पसंद है उसकी 9 बातें। 8, 9 और 10, वो नहीं, दूसरा भाग। और तुम कौन सी जनक हो? तुम बाप की जनक हो, दादी को कहा ना। और क्या कहा? वरदान? नहीं, वरदान नहीं, मुरली। आगे बढ़ते रहो, बाबा वरदान देते हैं। ये वरदान दिया कि कुछ और वरदान दिया? अविनाशी भव का कि अमर भव का? अमर भव का। और शांति की शक्ति? शांति की शक्ति, शांति के तीर, शांति का चुंबक, शांति के दाता, रेत में हरियाली और पहाड़ में पानी। तो सबसे पहला ग्रुप था ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर 7 बातें हैं, एक एक की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली बात हिम्मत। सबसे पहली बात हिम्मत। किस बात की हिम्मत? सेवा केंद्र खोलने की हिम्मत, नैतिक साहस, नैतिक बल, मॉरल करेज। इस ज्ञान योगी जीवन में बिना हिम्मत के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हिम्मत चाहिए, धारणाएं करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो सब करने के लिए हिम्मत चाहिए जो आज तक किसी ने किया नहीं। 1000 बार गिरना है परंतु हर बार गिरने के बाद उठकर खड़े होने के लिए हिम्मत। तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर निरंतर चलने के लिए हिम्मत। चाहे कितनी बार भी माया गिराए, हारना नहीं, उदास न हो जाना। कभी भी हार न होना, इसमें महानता नहीं है। महानता है जब जब तुम गिरो फिर से उठ के खड़े हो जाना, इसमें महानता है। फिर वो गिरना पुरुषार्थ का गिरना हो, फिर वो गिरना स्थिति का गिरना हो, फिर वो गिरना ब्रह्मचर्य से गिरना हो, फिर वो गिरना किसी धारणा से गिरना हो, किसी श्रीमत से गिरना हो, किसी नियम से, किसी नेम से, किसी मर्यादा से गिरना हो, जब जब गिरो फिर से उठ खड़े हो जाना। और उठने के बाद फिर वो कारण ढूंढना कि गिरे क्यों, बजाय इसके कि पश्चाताप करते बैठे, दुखी होते रहे, गिल्ट कॉन्शियसनेस में रहे, अपराध भाव से जीवन व्यतीत करने से अच्छा उठो, जागो, देखो। कल की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, स्मृति चाबी है जो माया चुरा ले जाती है। कौन सी चाबी? मैं कौन? यह स्मृति, यह अथॉरिटी। जागती ज्योत, जागती अथॉरिटी बनो। इस अथॉरिटी के सामने और कोई अथॉरिटी नहीं है। जागती ज्योत अर्थात मैं कौन का सिमरन। माला कितनों ने फेरी है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में माला कितनों ने फेरी है? तो अभी वापस माला ले लो और फेरना चालू करो, जब तक पूरे 108 समान मन ही मन ना गिन लो। रुकना नहीं, एक माला लेना और समान फेरना चालू। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं महान आत्मा हूं। जब तक की माला पूरी नहीं हो जाती तब तक। अच्छा है अभ्यास, यह भी योग का एक प्रयोग है। तब पता चलेगा बुद्धि की तर्कश में कितने बाण हैं समान के, बुद्धि में कितने समान भर रखे हैं। बाबा ने कल कहा है, माला फेरते जाओ, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। ये जब विस्मृति हो जाती है तब गलतियां होती है, तब भूले होती है, तब फिर पश्चाताप प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रश्न ज्ञान और अज्ञान का नहीं, होश और बेहोशी का है। प्रश्न ज्ञान और अज्ञान का नहीं, नींद और जागरण का है। प्रश्न अवेकनिंग और स्लीप का है। अलबेलेपन की गहरी निद्रा, जब चाबी चोरी हो जाती है तो क्या हो जाते हो? अलबेलेपन की गहरी निद्रा में सो जाते हो। सोना नहीं है बस, उत्तिष्ठ जागृता। फिर से जागना। ऐसा नहीं कि ज्ञान कम है, ऐसा नहीं कि मूर्ख है। ज्ञान है, कौन ज्ञानी नहीं, सभी ज्ञानी है। परंतु अंतर जागरण का है, अंतर होश और बेहोशी का है। ज्ञान होते हुए भी बेहोश है उस पल के लिए, उस क्षण में, और तब गलतियां होती है। इसके लिए सतत जागरण, निरंतर अहर्निश जागरण। लड़ाई नहीं करते बैठना है विकारों से, काम विकार से लड़ाई चालू है वर्षों से, जीत नहीं पा रहे। क्रोध से लड़ाई चालू है, जीत नहीं पा रहे। और जितना ही लड़ाई का भाव है, जीतना है, वो विकार, वो शत्रु और शक्तिशाली होता है। लड़ना छोड़ दो, देखना चालू करना है। जागरण, साक्षी भाव, क्रोध आया और गया, हमने कुछ नहीं किया। साक्षी, जागरण, होश, और होश को बढ़ाना है, अवेकनिंग को बढ़ाना है, तो सबसे पहली चीज जो इस ब्राह्मण जीवन में चाहिए, हिम्मत, साहस, करेज। रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। वैसी भी हिम्मत और वैसी भी हिम्मत, सूक्ष्म हिम्मत और स्थूल हिम्मत। एक बार दादी प्रकाशमणि जी के जीवन में एक वर्णन है कि दादी सुबह बाथरूम में थे और वहां एक सांप आ गया, तो क्या किया होगा दादी ने? क्या किया होगा? कोई दूसरा होगा तो वैसे ही भाग के आ गया होता बाहर। दादी ने अपना नहाना वगैरह पूरा किया और फिर बाहर है, और फिर बाहर आके बताया कि अंदर सांप है। कितना साहस है, डर भी कुछ नहीं। कोई होता तो नहाना छोड़ दिया होता बाद में, पहले सांप को निकालो फिर। दादी जानकी को ये मेल के द्वारा बताया था, तो दादी जानकी ने ये उधर क्लास में सबको पढ़ के सुनाया था। ये भी हिम्मत और वो भी हिम्मत, निर्भय। आबू में बहुत सारे सांप है। जब यज्ञ यहां आया था तो ब्रह्मा बाबा के पैरों में सांप लपेट लिया था। बाबा ने क्या कहा था, बच्चे को दूध पिलाओ, वो भी बच्चा है, कौन सांप। ये भी सांस और वो भी सांस, जो एक जगह निर्भय है वो सब जगह निर्भय हो जाता है। जिसे हर बात में भय है, छोटी छोटी चीजों से भय है, निंदा से भय, ग्लानि से भय, अपमान से भय, ये भी भय है। जानवरों से भय, कॉकरोच से भय, छिपकली से भय, चूहे से भय, अंधेरे से भय, शेर तो होना चाहिए परंतु बहुत सारे भय जो है वो बेसलेस, जिसकी कोई नींव नहीं है, ऐसे भय। और जो हमने मनगढ़ंत, इमेजिनरी, काल्पनिक बना रखे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, अपने आप को निर्भय बनाना, अपने आप को सभी भयों से मुक्त करना, अपने आप को हिम्मतवान, साहसवान, साहसी, प्रतापी बनाना, यह हमारा अपना दायित्व, अपना कर्तव्य है, ताकि हम निर्भय होकर चल सके। तो सबसे पहली बात, सात बातें कही बाबा ने ऑस्ट्रेलिया को। पहली, हिम्मत। दूसरा, अपने पैरों पर खड़े रहना। सेवा में वृद्धि की और सेवा में सफलता पाई, वो लंदन का उदाहरण दिया, वहां तो पालना देने वाले हैं, यहां पर कोई पालना देने वाला नहीं है, फिर भी 1984 की मुरली है, 16 जनवरी। स्वयं अपने पैरों पर खड़ा रहना, कोई आधार नहीं, किसी का सहारा नहीं, सब छूट गए और हम अकेले खड़े, अकेले शक्तिशाली, और ना ही किसी का सहारा चाहिए, कोई देहधारी नहीं चाहिए, एक का सहारा काफी है बस। और जब सहारे टूट जाते हैं बाकी, तभी उसका सहारा सबसे ज्यादा अनुभव होता है। कोई बीमार है, उसको पूछने वाले 100 लोग हैं, तो बाप की याद आएगी क्या उसको? एक दूसरा बीमार है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, तो किसको याद करेगा वो? उसको अपने आप याद करेगा। मनुष्यों को सहारा बनाना, अर्थात स्वयं की हिम्मत को कम करना है। जो जितना अकेला खड़ा है जीवन की इस कर्मभूमि में, इस कुरुक्षेत्र में, वो उतना अधिक शक्तिशाली है। दे आर मोस्ट पावरफुल हु स्टैंड अलोन। जिसमें इतना साहस है ये कहने का कि हमारा ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। और जो इसका उसका सहारा ढूंढते रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, कंधा ढूंढते रहते हैं रख कर रोने के लिए, अच्छा लगता है कोई कंधा मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, किसी की मदद मिल जाए, भीख नहीं मांगनी है किसी से, ना प्यार चाहिए किसी का, ना मदद, ना किसी की सहानुभूति, ना सांत्वना, ना किसी की केयर, ना किसी का अटेंशन, ना किसी से शक्ति लेनी है कि शक्ति दो, धैर्य दो, ना सुख के भिखारी, ना शांति के भिखारी, ना आनंद के भिखारी, हमें किसी चीज की भीख नहीं मांगनी है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, निराधार। तो अपने पैरों पर खुद खड़े रहना, स्थूल भी और सूक्ष्म भी, मुख्य है सूक्ष्म रूप से। इमोशनल डिपेंडेंसी ना हो जाए किसी पर, भावनात्मक अवलंबन। एक होता है डिपेंडेंसी के भी बहुत सारे प्रकार है, एक है शारीरिक अवलंबन, बीमार है कोई, किसी और का सहारा चाहिए, ठीक है माना, पर बीमार जब तुम पड़ते हो कारण भी तुम्हारा ही है कहीं ना कहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है अपनी गलती से तो बाप दादा उसे ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कहते। और किसी का अवलंबन, और किसी का सहारा, इसके लिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो कोई माता मधुबन आ जाए और यहां आकर ही बीमार पड़ जाए और 10 दिन उसी की सेवा में दूसरा कोई तैनात, और ऐसा हमेशा होता है, यहां आते सेवा के लिए और यहां आके बीमार पड़ जाते, फिर दूसरों को ही उनकी सेवा करनी पड़ती है। अब वो उनकी तो ऐसी भावना नहीं थी कि हम बीमार पड़ जाए, पर पड़ गए जो भी है कारण। स्वयं को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए संयम भोजन का, ऐसा नहीं कि ये बनाए और हमको बहुत पसंद है और इतना खा लिया कि बस दूसरा दिन सब कुछ चौपट, अमृत वेला गया, मुरली गई और दिन की सेवा गई। स्वराज्य पर मुरली चली है, स्वराज्य, स्व पर राज्य, स्व पर शासन, स्व पर अनुशासन, स्व पर नियंत्रण, स्व पर अंकुश, आत्मनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल। ऐसे जो है वो बाप के दिल तख्त नशीन, ऐसे जो है वो भक्तों के सिमरन की माला है, ऐसे जो है वो बाप के गले की माला है, ऐसे जो है वो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे जो है वो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकी नाथ है, ऐसे जो है वो कोटों में कोई विशेष आत्मा है, ऐसे जो है उनके पास अधिकार है अटल अखंड अडोल, ऐसे जो है उनके पास सारे खजाने हैं। शारीरिक डिपेंडेंसी। दूसरा बौद्धिक निर्भरता। हमें कुछ बुद्धि का काम दिया गया, हम दूसरों की बुद्धि पर निर्भर है कि तुम बताओ क्या करना है, अपनी बुद्धि क्यों नहीं जला रहे। भावनात्मक निर्भरता, दूसरों की भावनाओं पर निर्भर, या उसको कहेंगे इमोशनल स्लेवरी। हमारे सारे इमोशंस किसी और के कंट्रोल में है, वो चाहता है हम सुखी तो हम सुखी, वो चाहता है हम दुखी तो हम दुखी, उसके ऊपर इतना निर्भर है, इतना अटैचमेंट है किसी एक आत्मा से कि उस वो आत्मा प्रभावित करती है हमें, ये भी एक डिपेंडेंसी है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कुमारों के लिए जो बाहर रहते हैं, पैसों की भीख नहीं मांगनी है कभी किसी से भी, अपने पैरों पर खुद खड़े होना है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ना। फिर है स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी, कोई दूसरा पुरुषार्थ कराए तो करेंगे, मधुबन में प्रोग्राम बने भट्टी का तब हम भट्टी करेंगे, अपनी भट्टी रोज खुद ही आयोजित करना है। आज भट्टी 3 दिन की है हमारी, अपना ही प्रोग्राम खुद बनाना है, 2 दिन की, 1 दिन की, खुद ही अपनी भट्टी करनी है, खुद ही स्वयं को भट्टी में बिठाना है। तो पहली बात बताई हिम्मत, दूसरी बात बताई अपने पैरों पर खड़े रहना अर्थात स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, किसी पर भी आधार नहीं, अपना संग अब स्वयं ही हो जाना, चिरा चिरा जुड़ला माझा, मीच माझा संग झालो, मैं ही अपना संग हो गया, किसी और का आप सहारा नहीं, किसी और को आप आधार नहीं, किसी और की अब मदद की आवश्यकता नहीं। हाँ वो करे तो ठीक, पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है कि दूसरे आकर मेरी मदद करे, मैं बीमार हूं दूसरे मेरी देखभाल करे, कोई नहीं चाहिए। वो बैठा है ऊपर, उसे सब पता है किसे क्या चाहिए और किसे क्या नहीं चाहिए, वो सब करेगा। तो दूसरी बात, पैरों पर खड़े रहना। तीसरा, सेवा और ज्ञान में रुचि। क्या कहा ऑस्ट्रेलिया वालों को? सेवा और ज्ञान में रुचि अच्छी है, इंटरेस्ट चाहिए। जो कहानी में बताया, कोई कहे कि मुरली नहीं पड़ी, इसके ये कारण है। जहां रुचि है, जहां इंटरेस्ट है, वहां पर कोई बाधा नहीं। जो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड होते पढ़ाई में, कहीं पर भी बैठकर पढ़ाई करते, ये कारण नहीं देते कि हमको पहले क्यों नहीं बताया, हमारी लाइट चली गई थी, ये हो गया था, जगह नहीं, कुछ नहीं, नो रीजंस। तो रुचि अर्थात हॉबी, इंटरेस्ट डेवलप करनी, किस में? ज्ञान योग में, सेवा में। सेवाओं में तो बहुत है, ज्ञान और योग में डेवलप करनी है। योग में भी है, ज्ञान में रुचि उत्पन्न करनी है। ज्ञान में रुचि अर्थात क्या? ज्ञान का विस्तार। ज्ञान में रुचि अर्थात, मुरली में वरदान आया, एवर रेडी बनो, समेटो। कैसे? इसका विस्तार करना, इस पर चिंतन करना। ये वाक्य बाबा ने आज क्यों कहा, क्यों ऐसा कहता है? बाप गलियों में नहीं जाते, तुम जाकर भाषण करो, मैं नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं मुरलियों में, वहां पर बुद्धि ठहर जाए। उन वाक्यों को वहां से निकालना और उनका चिंतन करना। इतनी सारी, ये सारी अलग अलग विधियां बनी हुई है, 108 है। कोई भी एक मेथड इसमें से लो और मुरली का चिंतन करो, नहीं तो दिन पूरा व्यर्थ में गुजरेगा, इधर उधर की बातें करने में, भोजन में, व्यर्थ में, निगेटिव में, परचिंतन में, एक दूसरों की ग्लानी करने में, इसमें दिनचर्या निकल जाएगी। बोल में, आवाज में, शब्दों में, शब्दों के जंजाल में, महाजाल में, रुचि, इंटरेस्ट। छोटा बच्चा होता है, उसको उसकी मैथ्स की किताब का कुछ भी याद नहीं रहता, पर उसको क्रिकेट मैच में जो दिख रहा है वो सब याद है। लास्ट ईयर किस क्रिकेटर ने कितने रन बनाए वो भी याद है। क्यों? क्या उसको ये कहेंगे, अरे तुमको कितने बुद्धू हो, तुमको इतना इतना इजी सम नहीं आता? क्या उसकी बुद्धि कम है? बुद्धि कम है तो उसको ये कैसे पता पिछले साल इस क्रिकेटर ने इतने रन बनाए थे? इंटरेस्ट, बुद्धि की बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात है। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो अपने आप याद रहती है, बाकी चीजें याद नहीं रहेगी, वो बराबर याद रहेगी। हमें कितना इंटरेस्ट है, कितना हमने अपने इंटरेस्ट को निखारा है। ज्ञान और योग में इंटरेस्ट, रुचि, ये तीसरी बात। चौथी, निर्विघ्न। मेजॉरिटी निर्विघ्न है बाबा ने कहा। हां कुछ कुछ है जो छोड़कर चले गए, और बड़ा झाड़ है तो फल तो कुछ ना कुछ गिरेंगे, पर तुमको क्या करना है? उनको भी लेके आना है वापस। तो मेजॉरिटी तो निर्विघ्न है। जिनके जीवन में यज्ञ में बहुत विघ्न आ जाते हैं, और उनके जीवन के विघ्नों का भी कारण वो खुद ही है, उन्होंने स्वयं ही विघ्नों का आह्वान कर विघ्न निर्माण किए हैं। हाँ कुछ ना कुछ तो जाएंगे, बाबा के महावाक्य है, ये यज्ञ हिलेगा एक दिन, जो पक्के योगी बच्चे हैं वही रहेंगे, बाकी सब हट जाएंगे यहां से। जिनका की रुचि तपस्या में है, जिनकी रुचि ज्ञान योग में है, जो सच्चे हैं वो ठहरेंगे, बाकी जो ढोंग वाले हैं और आडंबर वाले हैं, दिखावे वाले हैं, ऊपर ऊपर से सतही जिनका जीवन है, सुपरफिशियल योगी जीवन है, वो सब हट जाएंगे। यज्ञ ही हिलेगा एक दिन। दो पेपर, एक तो वो बेगरी पार्ट था, सारे कच्चे कच्चे निकल कर चले गए, एक ऐसा ही पेपर फिर आएगा तब बहुत सारे निकल जाएंगे। तो चौथी बात है निर्विघ्न, स्वयं को निर्विघ्न बनाना, अर्थात यज्ञ को निर्विघ्न बनाना, स्वयं को निर्विघ्न बनाना अर्थात अपने सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाना, स्वयं को निर्विघ्न बनाना अर्थात मधुबन को निर्विघ्न बनाना, स्वयं को निर्विघ्न बनाना अर्थात विश्व को निर्विघ्न बनाना। मेरे पुरुषार्थ में कौन सी बाधा है, कौन से विघ्न है? स्वयं के अमृत वेले को शक्तिशाली बना देना अर्थात विश्व को शक्तिशाली बनाना, स्वयं के अमृत वेले को पावरफुल एक रस बना देना, जिसमें जरा भी नींद रिंचक मात्र ना हो, जरा भी अलबेलापन ना हो, जागती ज्योत होकर जिसमें आत्मा बैठे और दिव्य प्रकाश आत्मा में भरे। तो निर्विघ्न ढूंढने हैं, विघ्न कौन से हैं ढूंढने हैं, कारण क्या है उन विघ्नों के, जो दूसरों की ओर उंगली है, इसके वजह से विघ्न है मेरे जीवन में। जब ये मिट जाए और मुझे पता चले कि उसके वजह से नहीं, मेरी वजह से, तीन उंगलियां इधर है, ऊपर ये उंगली क्या दर्शाती है, ये उंगली दिखाती है कि इसके वजह से किया, और तीन उंगलियां दिखाती है मेरे वजह से, ये उंगलियां भगवान देख रहा है ऊपर से, इसकी वजह से, तीन इधर एक उधर और ऊपर से वो सब देख रहा है। तो स्वयं को निर्विघ्न बनाना है, ये चौथी बात। पांचवा वरदान, कौन सा वरदान दिया, अमर भाव का वरदान। खुद भी लो और दूसरों को भी सुना कर क्या करो, सुरजीत किस बात में अमर बनना है, जब भगवान अमर भाव का वरदान देते हैं अर्थात क्या, किस में मरना नहीं है, पुरुषार्थ में मरना नहीं है, ब्रह्मचर्य में मरना नहीं है, मुरली चिंतन मनन अध्ययन में मर जाना नहीं है, मर जाना अर्थात समाप्त कर देना, समाप्त मुरली नहीं, माया पुराण समाप्त करना है, मुरली पुराण नहीं। तो अमर भव अर्थात अमरता को पाना है, अर्थात एकर स्थिति को पाना है, अर्थात अविनाशी हो जाना है अमृत वेला, अर्थात मुरली चिंतन अविनाशी हो जाए, अर्थात सारी दिनचर्या अविनाशी हो जाए, अर्थात बीच बीच में याद अविनाशी हो जाए, अर्थात बीच बीच में अशरीरीपन का अभ्यास अविनाशी हो जाए, अर्थात नुमाशाम का योग अविनाशी हो जाए। ऐसे कितने हैं यहां पर जिन्होंने नुमाशाम का जो योग है वो पिछले एक मास में एक बार भी मिस नहीं किया, कम है, अमृत वेले का नहीं, नुमाशाम का। जितना महत्व अमृत वेले के योग को है उतना ही महत्व नुमाशाम के योग को है, उसके लिए टाइम निकालना है। वो जैसे अमृत वेले की तैयारी है वैसे ही 6 बजे से शाम के योग की तैयारी चालू हो जाए, जैसा अमृत वेला शक्तिशाली हो रहा है वैसा ही नुमा शाम का योग शक्तिशाली हो जाए। अगर कोई सेवा में है उस समय सेवा करते हुए भी, चाहे ट्रैवलिंग में हो चाहे ऑफिस में हो, परंतु वो नुमा शाम का समय चालू है, तो अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर कर्म करते हुए भी एक की याद में टिका देना, ये उनके लिए जो सेवा में है। परंतु यदि सेवा में नहीं है तो जरूर व्यर्थ में है, इसलिए नुमा शाम का योग नहीं हो रहा है। टाइम सेट करना है कि ये टाइम और कुछ करना ही नहीं है, 6:30 से 7:30 स्टॉप, बाकी सारी बातें। ये टाइम जैसा सुबह का हमने समय दिया था, इस टाइम को भी उतना पावरफुल बनाना है नुमा शाम का योग, वो भी इतना शक्तिशाली हो। तो पांचवा है वरदान, कौन सा? अविनाशी भव, अमर भव, अमर बन जाना है। उसके बाद में छठवा, नॉलेजफुल और कंबाइंड। माया के भी नॉलेजफुल बन गए हो, माया कब और कैसे आती है इसका तुम्हारे पास नॉलेज है, इसलिए सेफ रहते हो। बाप को जानना कोटों में कोई का काम है, पर उससे भी मुश्किल काम कौन सा है? माया को जानना। वो जो कोटों में कोई है उनमें से भी कोई में कोई ही जान सकता है माया को। माया किस रूप से आती है, और जैसे जैसे ज्ञान में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, माया का स्वरूप बहुत सूक्ष्म होते जाता है। आज की मुरली में कहा ना, लास्ट लाइन क्या थी? रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। जितना योगी आगे बढ़ता है उसकी माया उतनी सूक्ष्म होती जाती है, जो दूसरों को तो पता भी नहीं ऐसी भी माया होगी। दूसरों को कोई अनुभव ही नहीं है उस माया का कि ऐसी भी माया होती है, वो तो किसी स्थूल को ही माया समझते हैं। पर माया इतनी सूक्ष्म इतनी सूक्ष्म इतनी सूक्ष्म होती जाती है कि वहां पर नाम वहां पर पद नहीं मिलना वो दुखी करता है आत्मा को। तो माया को जानना है, माया को परखना है, और दूसरों के जीवन की माया को नहीं किसके जीवन की माया को? खुद के जीवन की। दूसरों को जाके नहीं बताना तुम्हारे जीवन में इस कारण माया है। दूसरों के न्यायाधीश हम नहीं है, हम अपने न्यायाधीश है। मेरे जीवन में, जीवन छोड़ो दिनचर्या, संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, स्मृति, चलन, वृत्ति, दृष्टिकोण, स्वप्न, कल्पनाएं, कहां माया है? लिखना, डिजिटल वर्ल्ड, फोन कॉल्स में कहां माया है? मैसेज करने में कहीं माया तो नहीं? जिस तरह की मैसेज मैं कर रहा हूं उसी में माया तो नहीं? तो माया को जानना, माया को परखना, माया को समझना, और माया से युद्ध नहीं करते बैठना। क्या करेंगे फिर? युद्ध करेगा तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। जीतना है ये संकल्प किया कि कुछ तो होने लगता है उधर से, उसकी व्यर्थता को जान लेना। क्या करना? व्यर्थता को जान लेना। यहां से कितने लोग हैं कि यदि मार्केट में जाओ और बहुत अच्छी जलेबी बन रही है, किसको खाने की इच्छा होती है? क्यों? बहुत अच्छी है। क्यों? इतनी बढ़िया बन रही है, और यहां तो कितना दिनों से बनी भी नहीं क्यों क्यों छोड़ दिया? जो अभी अभी ज्ञान में आए 10 दिन से 15 दिन से उन्होंने भी छोड़ दिया, जबकि रोज पहले रोज जाते थे और रोज इधर खाओ उधर खाओ, ये होटल वो होटल। ये धारणा एकदम ऐसी 100% कहां से आ गई ब्राह्मणों में? क्यों? व्यर्थ का पता चल गया। यही चीज विकारों के साथ क्यों नहीं हो रही है? काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देता है, ये विकार ने तुमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, परंतु ये फिर भी चालू है इनका आना। जबकि वो धारणा स्थूल वाली तो एकदम ही कर दी सबने। क्यों? क्योंकि उसका नुकसान का पता चल गया। क्यों? क्योंकि व्यर्थता का पता चल गया। जब चीजों की व्यर्थता का पता चल जाएगा अपने आप वो छूट जाती, तब तक नहीं छूटती, तब तक द्वंद्व चालू ही रहता है, तब तक वासनाओं के अधीन होते रहता है व्यक्ति। एक पुरुष है, एक स्त्री है, उस पुरुष को उस स्त्री से बहुत प्यार है, उसके प्रेम पाश और मोह पाश में फंसा हुआ है, और एक दिन उसको पता चलता है कि यह स्त्री तो धोखा दे रही है, तो कितना टाइम लगता है उसको छोड़ने में? एक सेकंड। विश्वामित्र को कितना टाइम लगा मेनका को छोड़ने के लिए? जैसे ही पता चला कि यह तो इंद्र की भेजी हुई है मुझे फंसाने के लिए, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, तुरंत छोड़ दिया। फिर उस बच्ची को भी नहीं देखा, उस शकुंतला को वहीं छोड़कर चला गया। कौन उसको देखेगा? छोटी बच्ची रो रही है, वो तो चली गई स्वर्ग, मां और बच्ची पड़ी हुई है, वो बाप रुका थोड़ी, ऐसा नष्ट मुआ बन गया। जब चीजों की व्यर्थता का पता चल जाता है, जब ये पता चल जाता है मेरे इर्द गिर्द ये ट्रैप जाल बिछाया गया, ये तो षड्यंत्र है, तुरंत वहां से कूद के व्यक्ति बाहर आता है। तो जब ये पता चल जाए ये सारा षड्यंत्र है, ये ट्रैप है, ये संबंध ऊपर से दिख रहा है सेवा सेवा सेवा, पर अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। जब व्यर्थता का पता चल जाए तो विकार छूट जाए, जब नुकसान का पता चल जाए तो विकार छूट जाए। लड़ते नहीं बैठना है उससे, लड़ेंगे तो हार होगी और फिर दुख होगा, फिर लड़ेंगे फिर हार फिर दुख। साक्षी होकर देखना यह है व्यर्थ है। व्यर्थ ऐसा गिर जाएगा जैसे सूखे पत्ते गिर जाते हैं पतझड़ में, तो माया को जान लेना, माया को समझना परखना। और लास्ट पॉइंट, जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल। बाबा ने कहा भाई भी सेंटर संभाल रहे, तो स्वयं को रिस्पॉन्सिबल कर देना है। कल कहा ना बाबा ने, राज्यसभा में हरेक के मस्तक पर, सिर पर क्या है? ताज है, मस्तक में मणि है, नैनों में याद का प्रकाश, विस्मृति का अंधकार नहीं, याद का प्रकाश। ऐसी ये राज्यसभा है, राज्य अधिकारियों की सभा है, ब्राह्मणों की सभा है, बेफिक्र बादशाहों की सभा है, जो श्रेष्ठ स्थिति में स्थित है, संपूर्ण स्थिति में स्थित ऐसे रूहानी नशे में रहने वाले हैं उनकी ये सभा है। केवल संगम युग पर रहती लगती है ये सभा, विश्व भर की ब्राह्मण आत्माओं की ये सभा है। ऐसी सभा में बाप आते हैं, ऐसी सभा देखकर बाप हर्षित होते हैं। राज्य अधिकारियों की सभा, मायाजीत आत्माओं की सभा, डबल राज्य अधिकारियों की ये सभा। यही थी ना मुरली शुरुआत? तो हम वो है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल। हमारी स्थिति गिर जाना विश्व के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हमारा अमृत वेला साधारण हो जाना विश्व को अपने सकाश से वंचित कर दिया, घोर अपराध है। अमृत वेला नींद में चला गया, हमने सोचा क्या बाप को तो पता है, थोड़ा सा उठ लिया, थोड़ी बहुत बातें कर ली बाबा से, पर विश्व का नुकसान कितना हो गया, सकाश नहीं पहुंची। सकाश का अकाल है संसार में, आत्माएं दुखी है, अशांत है। तुम शांति के चुंबक बन जाओ, तुम शांति दाता बन जाओ। पहाड़ है, रेत है, एक एक हृदय रेत बन चुका है, एक एक हृदय पाषाण बन चुका है। उस पाषाण हृदय में गंगा बहाओ ज्ञान की। तुम्हारा काम है। उत्तिष्ठ भारत, हे भारत के निवासियों जागो। मगध में बाप आए हैं, हे मागधो जागो। तो जागरण जागना है। तो ये सात बातें ऑस्ट्रेलिया को कही। पहली हिम्मत, फिर से हिम्मत बांधनी है। हिम्मत जो खो गई है फिर से जुटानी है। हिम्मत न खोना, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, इस मार्ग में तीव्र पुरुषार्थ के हम बढ़ते जाएंगे। आंधी आए तूफान आए, कभी नहीं घबराना है। पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, उसमें जीवन का उद्धार। नाव पुरानी ओ साथी, संभल के चल तू। दूसरा, पैरों पर खड़े रहना, स्वावलंबन। तीसरा, ज्ञान और योग, तीनों लगा दो यहां पर, ज्ञान योग सेवा सब में रुचि। अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है, ये सोचो कि मेरा मुरली में इंटरेस्ट कैसे बढ़े, मैं क्या करूं, कौन सी विधि अपनाऊं, किस तरह से मुरली सुनूं, क्या जिस तरह से मुरली सुनता हूं वही ठीक है या कुछ बदलने की आवश्यकता है, या जिस तरह से मुरली चिंतन करता हूं क्या उसके अलावा भी कोई मेथड है, विधि है, कोई युक्ति, कोई जुगत, कि जिस आधार से मैं मुरली पढ़ूं, सुनूं, डिस्कस करूं, क्या करूं, कैसे इस मुरली में रस आ जाए। तो तीसरा रुचि, चौथा निर्विघ्न, स्वयं को निर्विघ्न बनाना है, स्वयं की बुद्धि को निर्विघ्न बनाना है, तो बुद्धि दिव्य बन जाएगी। बुद्धि में ब्लॉकेजेस है, उसके लिए रिटेन नहीं कर पाती। बुद्धि की ब्लॉकेजेस को खोल दो, सोचो अमृत वेला, वो अपने सिर पर भगवान ने हाथ रख दिया है। दिव्य बुद्धि भव, दिव्य बुद्धि मिल जाएगी और बुद्धि चमत्कार करेगी। अगला वरदान, वरदान अविनाशी भव अमर भव। अगला नॉलेजफुल और कंबाइंड। इसी में और एक चीज कही है कि माया से हार तब होती है जब अकेले हो जाते हो। बाप से निरंतर कंबाइंड रहो तो हार नहीं होगी। जरूर गलती के समय बाप से दूर थे इसलिए गलती हुई, जरूर विस्मृति में थे, बेहोशी में थे, मूर्छा में थे, अनकॉन्शियस थे इसलिए गलती हो गई। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो था, पर उस 10 मिनट के लिए, उस 1 घंटे के लिए, उस 1 दिन के लिए ज्ञान विलुप्त हो गया था और वहां गलती हो गई। होश की प्रैक्टिस करनी है। होश कैसे करते हैं? होश की प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। होश अर्थात अभी यहां बैठे हैं तो केवल यहीं बैठना है, बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी। चल रहे हैं तो केवल चलना है, खा रहे हैं तो केवल खाना है, ये प्रैक्टिस है छोटी छोटी। सो रहे हैं तो मैं आत्मा सो रही हूं, बस एकाग्र करने का अभ्यास। बात कर रही हूं तो बात कर रही हूं, बोल रही हूं तो केवल बोल रही हूं, सुन रही हूं तो केवल सुन रही हूं और कोई दूसरा विचार नहीं। ये है अवेयरनेस की प्रैक्टिस, जागरण की प्रैक्टिस। इसमें गलतियां नहीं होगी, फिर इसमें याद आएगा कि मैं कौन। बंद कमरा, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, अकेला मैं हूं, परंतु विश्व मुझे देख रहा है, तो गलतियां नहीं होगी। नहीं तो ये भटकाएगा। छोटा सा साधन है पर भटकाने में समर्थ है। रावण ने अंतिम चाल खेली है अपनी, अंतिम दाव, जब पता चला ये लोग नहीं जाते उधर सिनेमा में, वो तो कुछ करेगा ना, उसमें नवीनता बहुत है, तुम में नहीं है पर उसमें तो है। उसके पास इतनी युक्तियां है फंसाने की, उसके बाद में लास्ट जिम्मेवार। तो ये सात बातें हैं। फिर ब्राजील ग्रुप है, उसमें दो तीन बातें कही है। सबसे पहली बात, लगन से विघ्नों से पार हो जाते हैं और बाप की समीपता का अनुभव होता है। चाहे कितने भी दूर शरीर हो परंतु समीप हो, लगन। मीरा कोई बहुत बुद्धिमान नहीं थी, मीरा कोई डांसर या सिंगर नहीं थी, ना ही मीरा ने किसी डांस क्लास या सिंगिंग क्लास ज्वाइन की थी कभी। क्या था उसके पास? लगन थी, प्यार था। मीरा कोई बहुत साहसी नहीं थी, पर कैसे सड़क पर आ गई? उस राजस्थान में जहां स्त्रियों ने सदियों से घूंघट नहीं उठाया, वहां बावरी नाच रही है। ये कौन सा साहस? किसने दिया उसको? कहां से ट्रेनिंग ली मॉरल करेज की या करेज की? कहां से आई उसमें ये पावर, ये करेज, ये प्यूरिटी, ये निर्भीकता? उस प्रभु प्रेम ने प्रदान की, उस लगन ने दी उसको। क्या ऐसी लगन, ऐसी आग! आग चाहिए आग। पारसियों में जरतुस्त्र ने कहा था, अपने अंदर आग उत्पन्न करो, पर उन्होंने शायद गलत समझा और बाहर आग की पूजा चालू कर दी, फायर वर्शिप। पर उसने जो कहा था जरतुस्त्र ने, अपने अंदर आग उत्पन्न करो। जैसे कोई एक्टर होता है ना, एक्टिंग करता है, तो डायरेक्टर आता है, अरे क्या एक्टिंग कर रहे हो? ऐसी कोई एक्टिंग करता है क्या? फिर से एक्टिंग, फिर से कट कट कट, कितनी बार सीन कट करते हैं? लास्ट में आके कहते हैं, अरे अभिनय की आग उत्पन्न करो, तब कहीं अभिनय कर सकते हो। ऐसे अभिनय थोड़ी ना कर सकते हो, अभिनय कोई थोड़ी कोई कर सकता है। बेस्ट परफॉर्मेंस देना है उस सीन के लिए, ऐसा लोगों को लगे कि देखते ही आंसू आ जाए, उसमें खो जाए उस सीन में। ऐसे परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए? आग, अभिनय की आग। ड्रामा स्कूल में यह सिखाया जाता है। तो यहां पर भी कौन सी आग चाहिए? लगन की आग। तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात कही बाबा क्या करते हैं? मालिश, पाँव दबाते हैं, परंतु सबके नहीं दबाएगा। किसके दबाएगा? वो कान्हा हर एक के घर में थोड़ी जाता है माखन खाने। सब गोपियों के घर नहीं जाता है, किसी किसी के घर जाता है। वो माखन अर्थात शुद्ध हृदय, और वो ठहरता भी नहीं है, भाग जाता है। नटखट तेरा लाल यशोदा, नटखट तेरा लाल। जो शुद्ध हृदय है उन्हीं के पास जाएगा वो। तो जो ऐसे तन मन धन से समर्पण जिन्होंने किया है उनके पास हो जाता है। आज कहा ना, गरीबों का पाई पैसा और इक्वल किसके है? साहूकारों के, धन के बराबर है। आज कहा है ना सागर मुरली में, चावल क्या, चपटी, चावल चपटी, चावल चपटी। तो वो सेवा करेगा। ये एक बात। फिर से और एक बात कही, हिम्मते बच्चे मदते बाप। जहां हिम्मत रखेंगे वहां बाप मदद करेगा। और लास्ट बात इसमें कही, चौथी, मन मना भाव है तो बाप के समीप हो। ऐसे ब्राजील में चार बातें कही है। जो उसके याद में है वो समीप है, जो उसकी याद में है वो मधुबन में ही है। केवल ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा मेरा रथ। हे नारद सुन, मैं ना तो वैकुंठ में हूं, ना तो मैं योगियों के हृदय में हूं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति। मेरा भक्त अनन्य भाव से, मेरा प्रेमी अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, गुणगान कर रहा है, मेरी मुझे याद कर रहा है। तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां खड़ा हूं। ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं, जो मेरी याद में है मैं उसके साथ खड़ा हूं, फिर वो कहां पर भी हो मैं उसके साथ हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो जो मन मना हुआ है वो बाप के समीप है। तो ऐसी ये चार बातें। ब्राजील बहुत दूर है, ब्राजील सबसे दूर है, ब्राजील में जाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो शायद मधुबन से सबसे दूर कोई होगा तो यही देश है, यहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है पहुंचने के लिए। फिर दादी से मुलाकात की, क्या कहा दादी, चक्कर लगा के आई। तो इसमें भी क्या है, बहुत बड़ा राज है, कहीं जाना, चक्कर लगाना, अर्थात आत्माओं का कल्याण करना, आत्माओं को दुआएं, आत्माओं की दुआएं प्राप्त करना। और वहां हो सकता है कोई एक मन है जो अंधकार में है, कोई एक मन है उदासी और विषाद में डूबा हुआ है, और हो सकता है कि हमारे मुख से भगवान ऐसा कुछ बुलवा दे कि उसके बुद्धि के कपाट खुल जाए, नैनों में याद का प्रकाश आ जाए, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश फूट पड़े, और हमें नहीं पता हमने ये बोल दिया, पर हो सकता है ऐसा। ब्राह्मणों की वाणी में इतना सामर्थ्य है। जानकी दादी को क्या कहा, दो जनक है। कौन कौन से दो जनक? एक विदेही और एक ट्रस्टी। तुम हो बाप का जनक, तो क्या करो, कौन सा दान करो? नाम क्या है तुम्हारा? जनक। जनक गृहस्थ दिखाया है, पर बड़े बड़े विद्वान और पंडित उसके पास आते थे। जनक सभा का गायन है शास्त्रों में। सुखदेव को व्यास जनक सभा में भेजते हैं सीखने के लिए। संसार में रहते हुए कमल समान का वो प्रतीक है, संसार में रहते हुए विदेयक अवस्था में रहने का वो प्रतीक था। इसके लिए उसके बेटी को क्या कहा जाता है? वैदेही। सीता का एक नाम वैदेही है, देह से विलग जो है, देह से अलग जो रहते हैं, देह से पृथक जिनका अस्तित्व है, इतना देह से डिटैचमेंट, वो जनक। तो जनक अर्थात विदेही, वो गायन। तो ये जो तुम्हारा नाम है इसी का दान दो, जो नाम का स्वरूप है उसका दान, जो नाम है यथा नाम तथा काम, उस स्वरूप में स्थित होकर दान देना अर्थात दूसरों को जनक बनाना अर्थात नाम दान। तो ऐसी कुछ बातें कल की मुरली में थी, अभी एक दो बातें आज की मुरली में आप बताएंगे क्या क्या थी, किस किस को कौन सी बात अच्छी लगी। रमता योगी बनना है अर्थात क्या, कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जा सकते हो, गली गली में जाके क्या करना है, बाबा का झंडा कि नारे लगाने, शिव बाबा की जय, क्या करना है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं, हर तरह से सेवा करो। और रात को हे नींद को जीतने वाले योगी, बहुत सो लिया द्वापर से, पूरी हुई क्या नींद? 10 घंटे कोई सो जाए उसके बाद में भी पूछो तो कहता है अभी भी थोड़ा सा नींद, ना तो आज तक कभी किसी की पूरी हुई, ना तो आज तक किसी का पेट भरा कि भरा। तो नींद को जीतना है, कैसे जीतेंगे नींद को? जीतना, नींद को कम कर दे तो जीतेंगे? योग निद्रा से नींद को जीतना है, योग निद्रा पर अनुसंधान करना है। योग निद्रा क्या है, योग निद्रा कैसी होती है, पांडव भवन में एक विस्तार से क्लास हुआ था योग निद्रा पर। योग निद्रा क्या होती है, योग निद्रा की कॉमेंट्रीज बहुत सारी, योग निद्रा की कॉमेंट्रीज यज्ञ में अभी तक किसी ने नहीं बनाई है, बाहर के भक्ति मार्ग वालों की कॉमेंट्रीज है, बहुत सारी कॉमेंट्रीज भक्ति मार्ग वालों की है। योग निद्रा पर शिविर होते हैं, योग निद्रा पर बड़े बड़े, सबको सुलाया जाता है शवासन में, और एक एक घंटा योग निद्रा की कॉमेंट्री कराई जाती है। योग निद्रा एक विधि है, योग निद्रा को समझना है, उसमें ज्ञान योग कंबाइन कर देना है, वहां वो बताते हैं संकल्प, तो हम ज्ञान का संकल्प ले सकते हैं। वहां वो बताते विजुअलाइजेशन, हम नौ स्टेप्स है उसकी, नाइन स्टेप्स ऑफ योग निद्रा, कैसे चेतना को शरीर में घुमाना, उस विधि से सोना, अर्थात एक घंटे में दो घंटे की नींद होगी, 15 मिनट में दो घंटे की नींद होगी, क्योंकि आधा टाइम व्यक्ति नींद का स्वप्न देखने में वेस्ट कर देता है। योग निद्रा पर अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, योग निद्रा। तो नींद को जीतेंगे योग निद्रा से। और क्या कहा आज? गुण और शक्तियों, उसको क्या करना अर्थात तपस्या है, सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा आज, कहा ना देखो इस मुरली में भी कहा हिम्मत, हिम्मत चाहिए सर्विस करने के लिए। कितनी बाधाएं आएंगे, कितने विघ्न आएंगे, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, तो हिम्मत। और क्या कहा? पढ़नी और पढ़ानी है, और जनता योगी हो गया। शरीर का शरीर से कभी प्यार नहीं होता है, आत्मा का शरीर से प्यार होता है। इस संसार में जो भी प्यार है अशुद्ध प्यार है, सतयुग में था शुद्ध प्यार, यहां पर विकार वाला प्यार है। परंतु वो विकार के प्यार को शुद्ध प्यार कहते हैं, है तो विकार परंतु प्यार कहते हैं। प्यार यहां कहां से? एक ही शुद्ध प्यार है वो परमात्मा से, बाकी जो भी देह के प्यार है अशुद्ध प्यार है, काम विकार से संबंधित प्रेम है वो, उसमें कोई सुख नहीं है। भी तो वो क्षणिक और जो तुरंत दुख में रूपांतरित हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन लाने वाला सुख है वो, छाया मात्र है, प्रतिबिंब है दुख का। तो पेटी बांधो, पैक्ड सूटकेस, देह और देह का जो भी है सब कुछ उसमें डाल दो और चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। ओम शांति।